ओम शांति। हंस वाहिनी वीणा वादिनी विद्या की देवी सरस्वती का वरदान जिन्हें स्वयं भगवान ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलो दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। बाल्यकाल से ही आपको यह ज्ञान मिला और 1969 में जब आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, मधुबन में आकर टीचर्स ट्रेनिंग की और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। आरंभ में आप राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि विभिन्न स्थानों पर सेवा अर्थ गए, जहां बाबा की सेवाओं को बढ़ाया, सेवा केंद्र खोले। और 1976 में जब आप मधुबन में आए तो दादियों ने आपको यहीं रहने का ऑफर दिया, जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 1976 से मधुबन निवासी बनकर आज दिन तक आप इस मधुबन धरनी में रहकर देश विदेश में अपनी सेवाएं देते हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स में अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन में होने वाली भर्तियों के कोऑर्डिनेटर हैं और साथ साथ मधुबन में होने वाले डबल विदेशी भाई बहनों के कार्यक्रमों के भी कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके साथ साथ आप इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं और वर्षों तक बाल्यकाल से ही जो मम्मा बाबा और दादियों की पालना प्राप्त की है, उसी पालना का वर्तमान में आप सबको रिटर्न देते रहते हैं, दादियों की सी भासना सभी को देते रहते हैं। आज हम आपसे सुनेंगे भर्ती का लक्ष्य और उद्देश्य बहुत विस्तार से। यूं तो लक्ष्य बहुत क्लियर है, चलो संपन्नता की ओर, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। और बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। और इसलिए दीदी को आज का विषय दिया है श्रीमद् का महत्व, कि श्रीमद् का महत्व क्या है, उस पर प्रकाश डालते हुए दीदी भर्ती का लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट करेंगे। दीदी को तिलक लगाया जा रहा है, तो अब दीदी से हम सुनते हैं। आदरणीय दीदी जी,
आप भी परिचय दीजिए।
इस शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में ज्ञान मिला, 1998 में जीवन समर्पित किया। समर्पित जीवन के आरंभ के पांच वर्ष, ज्ञान सरोवर के स्पार्क ऑफिस में दिए, जहां पर इस आत्मा को एक पुस्तक लिखने का अवसर मिला। मनोबल एवं मनसा सेवा इतनी मोटी किताब है जो लिटरेचर में सेल होती है। बाबा ने इस आत्मा को वो पुस्तक कंपोज करने के निमित्त बनाया, तो पांच वर्ष तक स्पार्क ऑफिस में सेवाएं दी। और चूंकि हम नागपुर सबछोन को बिलोंग करते हैं, वहां से निकले हैं, तो फिर बाबा ने नागपुर सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूंकि स्पार्क से जुड़े हुए थे, मतलब कि रमेश भाई और उषा दीदी से जुड़े हुए थे, नागपुर के बाद उन्होंने गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया और उसके बाद चूंकि शुरुआत तो हेडक्वार्टर से ही हुई थी, फिर गामदेवी के बाद पुनः हेडक्वार्टर में बाबा ने अवसर दिया तो वर्ष 2009 से शीलू बहन निमित्त बने। उनके साथ उनके ग्लोबल ऑफिस में बैठकर उनकी जो सेवाएं हैं उसमें हम अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, सर्व दादियां, सर्व मधुबन निवासी भाई बहने, इन सब की तरफ से और हमारी तरफ से भी आप सब खानपुर के भाई बहनों का मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, माता पिता के कर्म भूमि में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के दिन ताली बजाने की छुट्टी है। आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली हो कि मधुबन तपोभूमि में आपको भट्टी करने का मौका मिला। अवश्य आप सबके भाग्य की ये निशानी है क्योंकि बहुत चाहते हैं कि हम पांडव भवन में भट्टी करें और कईयों की तो इतनी लंबी लिस्ट है कि 3 साल के बाद आपका सोचेंगे। आपने भी 3 साल इंतजार किया शवन? 5 साल? अच्छा, 5 साल इंतजार किया। तो आज आपकी वो तपस्या मानो इंतजार आपका पूरा हुआ और आप मधुबन बाबा की भूमि पर पहुंच गए। वैसे तो सब मधुबन है लेकिन यहाँ के जो पवित्र वाइब्रेशंस है, जहाँ बाबा मम्मा ने दादियों ने कितनी तपस्या की है, उसके तो ज़रूर अलग ही अनुभव है। यहाँ पर बाबा के 4 धाम हैं जो ओरिजिनल धाम है, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, बाबा का हिस्ट्री हॉल और बाबा का शांति स्तंभ, जो ब्रह्मा बाबा की कितनी याद दिलाते हैं, जहाँ बाबा चारों ओर चक्र लगाते थे, तो वो स्थान भी कितने शक्तिशाली हैं, उसका तो आप पूरा लाभ लेंगे ही। पर साथ साथ हमारे कई वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभव युक्त क्लासेस भी सुनेंगे और तपस्या तो करेंगे ही। तो बहुत बड़ा लक्ष्य मिला है आपको, बैज दिया गया योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर। तो संपन्नता की ओर हमें जाना है और अभी जो अव्यक्त मूल्यां हम हर संडे को सुनते हैं रिवाइज कोर्स में, उसमें भी बाबा ने तपस्या वर्ष को महत्व दिया है। तो तपस्या तो हमें करनी ही है लेकिन तपस्या हमारी फलीभूत तब होगी जब पहले तो हमें ये निश्चय होगा जो बाबा कहते हैं 4 प्रकार का निश्चय। 1 स्वयं में निश्चय, 2 बाबा में निश्चय, 3 परिवार में निश्चय और 4 ड्रामा की हर सीन पर पूरा निश्चय कि ये सब सही है, सब कल्याणकारी है, ये भी निश्चय चाहिए। तो ये 4 प्रकार का निश्चय हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। और जब ये निश्चय पक्का हो जाता है तो हम हर कदम पर जो भगवान हमें आज्ञा देते हैं उस पर हम चलते हैं। तो शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें बहुत सी आज्ञाएं देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, सावधानी भी देते हैं, फरमान भी करते हैं और राय भी देते हैं। ये सब बातें आती है बाबा की मुरलियों में। लेकिन आज जो टॉपिक लिया है श्रीमत का महत्व, क्योंकि ये सब बातें श्रीमत में आ जाती है। कभी बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे सेवा करो, तो सेवा की भी बाबा राय देते हैं। फिर बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा आज्ञा करते हैं, अर्थात बाबा हमें इतनी ऊंची शिक्षा दे करके हम आत्माओं का कल्याण अर्थ बाबा हमें जो नियम मर्यादाएं बताते हैं उसको फॉलो करने लिए बाबा आज्ञा देते हैं। और फिर उनसे भी ऊंचा जो बाबा कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। ये पवित्र बनो, योगी बनो, शुरू से ही बाबा ने बच्चों से प्रतिज्ञा कराई थी और उसके लिए बाबा को सामना कितना करना पड़ा समाज का। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये मैंने नहीं कहा है, ये शिव बाबा ने कहा है। तो पवित्र बनो, योगी बनो, ये फरमान दिया। और आज भी बाबा की मुरली में था कि अगर इस फरमान का उल्लंघन करेंगे तो सावधानी दी। क्या दी? कि बहुत बाबा का नाम बदनाम करेंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ धर्मराजपुरी की बहुत सजाएं खाएंगे। वैसे तो देखेंगे बाबा की जो मुरलियां हैं, सबसे पहले बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, तो कितना प्यार भरा हुआ है, जैसे कि मिठास घुल के मुरलियों से हमें मिलती है। तो एक तरफ तो बाबा का प्यार है पर दूसरी ओर बाबा की सावधानी भी है। लेकिन उस सावधानी में भी कितना प्यार भरा हुआ है, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है। जिस स्थिति में हम परम धाम से इस सृष्टि मंच पर आए थे उसी स्थिति में वापस जाना है। हम आत्माएं कितनी पावन थी, कितनी शुद्ध थी, लेकिन समय अंतराल कैसे पतित बन गई, विकारों के वश हो गई, दुखी हो गई, अशांत हो गई, सब गुण और कलाएं हमारी खत्म हो गई और हम पट पर आकर पड़े। बाबा ये भी कहते हैं, उतरे तो धीरे धीरे सतयुग से लेके एक एक सीढ़ी उतरे, लेकिन द्वापर आते आते सीढ़ी नहीं उतरे, फिर गिरे। जैसे होता है ना सीढ़ी उतरना, एक 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 जो स्टेप होता है वो उतरते हैं, तो धीरे धीरे उतरते हैं। पर मान लो बहुत लंबी सीढ़ी है उतरने की और आधे के बाद अगर फिसल गए और गिरना शुरू किया तो क्या होता है? कितना जल्दी जल्दी गिरते हैं, उतरना तो धीरे धीरे होता है पर गिरना फट से नीचे गिर जाते हैं। और गिरे तो क्या होता है? हड्डी हड्डी चूर हो जाती है। हाँ, तो बाबा कहते द्वापर से तुम गिरे, और गिरे तो कितना जल्दी आपकी काया कला सब चट हो गई और अभी क्या स्थिति बन गई है। और ये भारत कितना ऊंचा था, अब उसकी क्या दशा हो गई है। तो जब हम ये बातें बाबा से सुनते हैं तो दूसरी तरफ बाबा हम बच्चों को इतना सम्मान देते हैं। हर मुरली में कोई न कोई सम्मान हमें मिलता है। कल भी बाबा ने, परसों की मुरली जिसमें बाबा ने कहा आप सभी यज्ञ रक्षक हो, ये कितना बड़ा सम्मान है यज्ञ की रक्षा करने वाले। कभी बाबा कहते आप होली हंस हो, आप खुदाई खिदमतगार हो, आप आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चे हो तो न जाने बाबा कितने स्वमान देते हैं। ये स्वमान हमारे अंतर की शक्ति को बढ़ाते हैं, हिम्मत को बढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा तो कहते हैं लेकिन हम ऐसे हैं नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे। बाबा हम में वो विशेषताएं देखते हैं तभी तो बाबा कहते हैं। अगर बाबा विशेषताएं न देखते होते तो बाबा क्यों कहते। बाबा कह रहे हैं चलो विशेषताएं नहीं भी है तो भी बाबा ये कह करके हमसे हमारे अंदर वो शक्ति भरते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर डल भी हो मान लो, लेकिन माँ बाप उसको कहेंगे तुम तो बुद्धू हो, तुम तो नालायक हो, तुम तो कोई काम के नहीं हो, तो क्या होगा उसका उमंग उत्साह जो थोड़ा बहुत होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप बच्चे को कहें तुम तो बहुत होशियार हो, तुम तो बहुत लायक हो, तुम तो बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो उसको उत्साह देते हैं तो क्या होता है बच्चा आगे बढ़ता है। तो ये माँ बाप का प्यार होता है बच्चे के प्रति। तो बाबा हमको कितने स्वमान देते हैं, साकार मुरली में तो देते और अव्यक्त मुरलियों में तो कितने ढेर स्वमान। हर अव्यक्त मुरली की जो पहली लाइन होती है उसमें ही कितने स्वमान भरे होते हैं। आज बाबा किनको देख रहे हैं, कौन से बच्चों को देख रहे हैं। हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करती हूँ क्योंकि वो सारा ट्रांसमिशन सारी दुनिया में जाता है। तो जब बाबा की अव्यक्त मुरली हम सुनते थे तो डायरेक्ट, तो एक एक स्वमान जो बाबा बच्चों को देते थे तो उसको मैं नोट करती थी क्योंकि ट्रांसलेशन करना है। और इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी का बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि हिंदी में जो वाक्य आता है तो वो लास्ट में आता है, माना वर्ब जो क्रिया है वो अंत में आती है। बाबा डैश 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 बच्चों को अब देख रहे हैं, मिल रहे हैं, वो तो बाबा लास्ट में बोलेंगे ना, तो वो क्रिया जो है वो आखिर में आती है वाक्य के। लेकिन इंग्लिश में वो सबसे पहले आती है, बाबा इज लुकिंग एट, बाबा इज मीटिंग या जो कुछ, तो वो वर्ब पहले आ जाता है। तो मैं सारा सेंटेंस लिखती थी और उसके बाद जब वो क्रिया आती थी क्या कर रहे हैं बाबा, तो वो उसको पहले बोलना होता था। तो जब लिखती थी तो उस समय नशा चढ़ जाता था, बाबा हमको किस नजर से देखते हैं। फिर ट्रांसलेशन करना होता है तो भूल जाएंगे, इसलिए लिखना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि बाबा अव्यक्त मूल्यों में तो कितने स्वमान देते हैं। और लास्ट में जब याद प्यार देते हैं तो वो सारे स्वमान फिर से बाबा सुनाते हैं। तो आप सोचिए कितना प्यार है भगवान का हम बच्चों से। तो हम सचमुच उस प्यार के पात्र हैं या नहीं, ये हम अपने आप से पूछें। अगर नहीं भी है तो बनना चाहिए क्योंकि भगवान हमको उस नजर से देखते हैं। फिर बाबा देखते हैं कि कई बच्चों को इतना प्यार भी देते हैं तो भी बच्चे नखरे करते हैं, अलबेले हैं, तो अलबेले हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, बहानेबाजी करते हैं। तो फिर बाबा क्या करते हैं, जैसे बच्चे को माँ बाप कहेंगे बच्चे तुम बहुत होशियार हो, अब और पढ़ो, देखो फर्स्ट नंबर आना है, आदि आदि। अब बच्चा थोड़ा नटखट है, अलबेला है, तो फिर उनको पिता क्या करता है, प्रलोभन देता है। देखो बेटा तुम अगर फर्स्ट नंबर आओगे ना तो मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आऊंगा, तुमको ये दूंगा, तुमको वो दूंगा, तुम जो चाहोगे मैं दूंगा, बस आप पढ़ो अच्छी तरह से। तो प्रलोभन देते हैं। तो बाबा भी उस प्यार में प्रलोभन तो बहुत देते हैं, है ना, बच्चे तुमको मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, ये कोई कम प्रलोभन है। कोई छोटा मोटा प्रलोभन देते हैं वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर विश्व का मालिक कौन बना सकता है, वो तो भगवान ही बना सकता है। एक बार यहाँ विदेशी भाई बहनों इस पर ड्रामा किया था, बड़ा रमणीक ड्रामा था। तो एक बच्ची थी वो पिता से जिद कर बैठी कि हमको बड़ी सौगात चाहिए, बड़ी सौगात चाहिए, बड़ा चाहिए बड़ा। अब माँ बाप क्या देंगे, तो वो पिता उसको कुछ देता है, गिफ्ट देता है, उसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं, उसको पसंद नहीं, कुछ भी उसको पसंद नहीं। फिर आखिर पिता को समझ में नहीं आया कि क्या देना है, और वो ज्ञान में चलता था, तो अभी क्या देना है बच्चे को, तो वो फिर वो ड्रामा में दिखाते हैं कि जैसे स्वर्ग का वो बना दिया, एक मॉडल जैसा बना दिया, और वो बेटी को प्रेजेंट कर रहा है, जैसे शिव बाबा प्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ ये हमको चाहिए, बाकी सब इस दुनिया की चीजें हमको नहीं चाहिए, तो विश्व का राज्य ये कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी सौगात है, ये भगवान के सिवाय तो और कोई नहीं दे सकता है। और सब बाबा कहते हैं इस यज्ञ से मन इच्छित फल मिलता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, जो सतयुग में कोई इच्छा रहेगी नहीं। तो ये भी तो भगवान का प्यार है। आज भी बाबा ने कहा दुआएं लेते हो वहां भगवान से, भीख मांगते हो, बाबा कहते भीख तो मांगनी नहीं, अधिकार है तुम्हारा, बस केवल पात्र बनो बस, तो बाकी तो अधिकार है अपने ऊपर, आप कृपा करो। बाबा पिता रूप में दे रहे हैं, शिक्षक रूप में पढ़ा रहे हैं, सतगुरु रूप में पावन बना रहे हैं, तो इसीलिए प्रलोभन देते हैं बाबा। कई लोग कहते हैं कि आप लोग तो ये कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आप लोगों के अंदर तो बहुत लोभ है, यहाँ तक कहते हैं कई लोग। हम कहते हैं ये लोभ हम वो क्या कहते हैं, हमें तो बस मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमको इस दुनिया में आना ही नहीं है, आप लोग स्वर्ग स्वर्ग करते हो। तो हम उनको क्या कहते हैं, आप लोग मोक्ष कहते हो, मुक्ति कहते हो, संसार में आना नहीं, ये तो आप केवल अपने लिए करते हो, स्वार्थ तो आपको है क्योंकि आप अपने लिए खाली चाहते हो, और हम तो कहते हैं सारी दुनिया स्वर्ग बन जाए, खाली हम थोड़ी, सारी दुनिया स्वर्ग बन जाए तो किसको ज्यादा, किसको लोभ है ज्यादा, किसका स्वार्थ है। वो जो कहते हमको मोक्ष मिले, हमको नहीं आना है, संसार दुख रूप है, ये है, हम तो कहते संसार सुख रूप बन जाएगा, हम सब सुखी हो जाएंगे। तो ये लोभ नहीं है, ये कल्याण की भावना है, सारा संसार सुखी हो जाए ये ठीक है, या मुझे ही मोक्ष मिले बस यही ठीक है। तो इसीलिए बाबा हमको इतना प्रलोभन भी देते हैं जरूर, और बाबा कहते यही तो मैं देने आया हूं। परमात्मा इतना बड़ा दाता है, जिसके लिए कहते देंदा दे लेंदा थक जाए, इतना देता है जो हम लेने वाले थक जाएं, वो दाता नहीं अपनी कमी रखता है। इसलिए इतना बाबा देता है, बस वो इतना मिल रहा है ये उसका नशा हो, भगवान हमको विश्व का मालिक बना रही है, भगवान का कितना प्यार है हम बच्चों के प्रति। तो स्वमान देना ये भी प्यार है, स्वर्ग का मालिक बनाना ये बहुत बड़ा प्यार है, पर फिर भी बाबा देखते हैं कितना भी उनको कहते तो भी क्या बच्चे नखरे ही करते रहते हैं, नटखट होते हैं ना बच्चे, नखरे करते हैं, तो फिर माँ क्या कहती है, देखो बेटा तुम पढ़ोगे नहीं ना तो देखो डैडी तुमको मारेंगे। मैं मारूंगी ऐसे नहीं कहती है, या तो पिताजी कहे, ये नहीं कहेगा मैं मारूंगा, वो कहेगा मम्मी मारेगी। मम्मी कहेगी डैडी मारेगा, मैं करूंगी ये नहीं। तो शिव बाबा भी क्या कहते, बच्चे धर्मराज सजाएं देगा, हाँ मैं सजाएं दूंगा ऐसे नहीं कहते बाबा, क्योंकि बाबा को तो प्यार है ना। तो जो जिसका प्यार होता है, जिससे प्यार होता है, उसको कैसे कहेंगे मैं मारूंगा, हाँ मम्मी मारेगी डैडी मारेंगे, तो वो तो प्यार करेंगे। तो इसीलिए भगवान भी क्या कहते हैं, धर्मराज की सजाएं मिलेगी। तो कई कहते हैं कि क्या बाबा हमको डराते हैं ऐसे कह करके कि धर्मराज की सजाएं मिलेगी, बाबा डराते नहीं हैं, लेकिन बाबा सावधान करते हैं, जो वास्तविकता है वो व्यक्त करते हैं कि ऐसा होगा, फिर रोना पड़ेगा, खून के आंसू आएंगे, न जाने बाबा ये क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब होगा। और फिर कई कहते हैं होगा देखा जाएगा, जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है, अगर उससे पूछो भाई अपराध इतना सारा किया, पहले क्यों नहीं सोचा कि इसका हमें इसकी क्या सजा मिलेगी, उस समय कहते देखा जाएगा। और जब जज के सामने आता है और जज पूरी स्टेटमेंट सुनाता है, तुमने ये 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 किया, ये किया, तो जैसे सुनता जाता है, क्योंकि सच्ची बात है, वो सुनता जाता है उसका मुंह कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, वो उसका सिर नीचे हो जाता है, क्योंकि शर्मिंदा तो होता ही है, और फिर उनको उनके लिए सजा का ऐलान होता है। तो धर्मराजपुरी भी तो ऐसा ही होगी ना, जो बाबा कहते अंत में साक्षात्कार होगा, क्या क्या तुमने भूले की, और वो आपने अपने आप को बदला नहीं, तो अभी खाओ सजा। तो बाबा हमको धर्मराज की याद दिलाते हैं, ये भी बाबा का प्यार है, सब में प्यार भरा हुआ है, क्योंकि बाबा हमसे बहुत ऊंची उम्मीदें रखते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों से तो बहुत ऊंची उम्मीदें तो रखते ही है ना, और हर बात हमको बाबा की मुरली से मिलती है, हर बात। तो मुरली क्या है हमारे लिए, श्रीमत। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो हमारे मन में प्रश्न हो या इच्छा हो या मानो कोई संशय हो, कोई बात हो, और मुरली में उसका जवाब न मिले। हर बात का जवाब मुरली में मिलता है, श्रीमत हमें मुरली में मिलती है, उठने से सोने तक, यहाँ तक कि नींद के लिए भी श्रीमत है। नींद भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सतोगुणी नींद है, रजोगुणी तमोगुणी, और बातें तो छोड़ो, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कौन से होने चाहिए, हमारी आदतें क्या होनी चाहिए, मानो हर एक छोटी छोटी बात के लिए भी बाबा की हमें श्रीमत मिलती है। तो इसीलिए श्रीमत का महत्व क्या है, हम उसको जितना समझेंगे उतना मुरली पर भी पूरा ध्यान जाएगा और श्रीमत का पालन भी करेंगे। तो इसीलिए हर बार बाबा कहते हैं कि जो भी आप सोचो, जो मुख से बोलो, जो हाथों से कर्म करो, जो कुछ भी आपका कदम उठता है, पहले ये अंदर में सोचो ये श्रीमत के अनुसार है या नहीं है। या बाबा कई बार कहते हैं उस समय ये सोचो, अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होता इस समय इस परिस्थिति में तो वो क्या करता, वो क्या करता। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है, कॉपी करना है। दुनिया में कॉपी करना निषेध है, कॉपी नहीं कर सकते एग्जाम में या जो भी, लेकिन यहाँ ब्रह्मा बाबा को खूब कॉपी करो। इसलिए ब्रह्मा बाबा के 10 कदम सुनाते ना, ये 10 कदम ब्रह्मा बाबा के, तो कदम पर कदम रखो, बाबा को कॉपी करो। या बाबा को देखा नहीं मान लो, परंतु कोई ऐसे कहे भी, तो बाबा की श्रीमत तो मुरली से मिलती है, वो ही बाबा को देखना ही है, क्योंकि बाबा ने वो सब किया। ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा बाबा ने तुरंत फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा को जरा भी संकल्प नहीं आया क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, हाँ ये सब क्या होगा, एक सेकंड भी नहीं सोचा। लेकिन शिव बाबा ने जो कहा तुरंत किया। अपनी सारी प्रॉपर्टी माताओं बहनों के नाम पर विल करो, बाबा ने कहा, शिव बाबा ने, और फट से। हालांकि बाबा के 2 बेटे थे, एक तो छोटा था लेकिन दूसरा तो शादीशुदा था, बड़ा था, और मतलब बड़ी उम्र भी थी, तो उसने तो बहुत विरोध किया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी माताओं बहनों के आगे कर दी, तो उसने विरोध भी किया, पर उसने कहा मुझे भगवान का आदेश मिला है, जो वो कहेगा वही मैं करूंगा। तो बेटा भी क्या कर सकता था, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी, बाबा के लौकिक पिता की तो कोई प्रॉपर्टी थी ही नहीं, बाबा की कमाई थी। बाबा के लौकिक पिता तो बहुत सिंपल थे, गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे, स्कूल के, कोई जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बाबा ने उस गरीबी से कैसे इतना बड़ा हीरे जवाहरातों का व्यापारी बन गया, उनकी कुशाग्र बुद्धि के कारण। तो उसकी अपनी अपनी मेहनत थी, तो जरूरी नहीं है कि बच्चे को देवे भी। और शिव बाबा ने जो कहा उसने किया, दादा की प्रॉपर्टी तो नहीं थी कि देनी पड़े। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया, परंतु देखो एक बीज ब्रह्मा बाबा ने रोपा अपने तन मन धन का, और देखो आज उस बीज का फल एक विराट विशाल वट वृक्ष की तरह बाबा का कार्य सारी दुनिया में चल रहा है। ऐसे ही कहेंगे ना, बाबा मम्मा की तपस्या, हमारी दादियों की तपस्या, उनका त्याग, उनकी सेवा, ये सब कैसे रंग लाया और धीरे 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 वृद्धि हुई। इन सब का आधार क्या था? बाबा की श्रीमत। तो बाबा की श्रीमत को हम इतना महत्व देते हैं, या सोचते ठीक है बाबा तो वही बात मुरली में कहता है, बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, वो तो करता हूं। कहीं उसको कितना हल्के में लेते हैं कि वही तो मुरली है, वही तो बातें हैं सब। लेकिन बाबा कहते हैं मैं अंत तक ये कहता रहूंगा। कौन सी बात? अंत तक क्या कहता रहूंगा? अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि यही आदि का पाठ और यही अंत का पाठ है, अंत में भी यही काम आएगा। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अंत में और कोई याद न आए, पर उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और सब अचानक होगा, इसीलिए हर वक्त तैयार रहना, एवर रेडी जिसको बाबा कहते हैं, क्योंकि अचानक होना है। स्कूलों में भी तो सरप्राइज टेस्ट होते हैं ना, तो बच्चों को तो हर वक्त तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी वो सरप्राइज टेस्ट हो जावे। ये थोड़ी है कि वो पहले से बताएंगे कि आज टेस्ट होगी, अचानक कहेंगे आज आपकी टेस्ट है। बच्चे के हमने तो पढ़ाई की नहीं, क्यों नहीं पढ़ाई की? रोज होमवर्क मिलता है, किस लिए मिलता है? पढ़ाई करनी है ना। तो ये तो बहाना दे ही नहीं सकते हैं कि हमको तो पता नहीं था, क्योंकि सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकती है। तो बाबा भी कहते सब अचानक होना है, पहले से कुछ नहीं बताया जाएगा। इसलिए हर वक्त तैयार रहना है, और हर वक्त तैयार माना इतना हमारा बहुत काल का अभ्यास हो जो उस समय और कोई याद ना आए। और कोई याद ना आए उसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। अंत में नहीं अभ्यास कर सकेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री मत का हर कदम कदम पर पालन करना है। और ये पहला पाठ सो अंतिम पाठ होना है, क्योंकि इसी में फेल हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं वो अंतिम जो पेपर होगा वो एक सेकंड का होगा, एक सेकंड का पेपर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना। अभी 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क्स, एक एक मार्क एक एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना, हाँ ना करना है, बस फॉल्स ट्रू, बस ऐसा होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन में, और उसको एक मिनट भी नहीं लगता है, आधा मिनट, क्योंकि हाँ या ना ही लिखना है, क्रॉस करना है या टिक मार्क करना है। तो अंत में ये एक सेकेंड का पेपर होगा, बाबा की केवल याद रही या कोई और आत्मा बुद्धि में आई, कुछ भी याद आया, चाहे व्यक्ति आया, कोई वस्तु आई, कोई वैभव आया, कोई घटना आई, कोई परिस्थिति आई, कोई स्थान आया, क्योंकि अंत में वही परीक्षा होगी हमारी जिसको हम बहुत समय से याद कर रहे थे। इसीलिए बाबा हमें बार बार सावधान करते रहते हैं। और ब्रह्मा बाबा ने तो कितनी तपस्या उसी अनुसार की। अंतिम दिनों में तो बाबा की तपस्या इतनी पावरफुल थी, पहले तो बाबा हर बात में ध्यान देते थे, हर एक चीज में, आज क्या भोजन पकना उसमें बाबा ध्यान देते थे, एक एक से मिलते थे, बहुत कुछ बाबा जैसे साकार में जैसे हर चीज में बाबा का अवश्य लेन देन था, लेकिन अंत के दिनों में बाबा न्यारे होते गए, न्यारे होते गए, न्यारे होते गए। दादी मनोहर दादी हमारी बहुत सुंदर अनुभव सुनाती थी बाबा के, कि कैसे वो बाबा के पास ही बैठी थी और एक बहन आई, टीचर बहन आई, और बाबा को, ये 1968 की बात है, तो बाबा को बहुत समाचार सुनाने लगी। बाबा मैंने ये सेवा की, वो सेवा की, वो सेवा की, वो सुनाने लगी। पहले तो बाबा सुनते थे, बाबा पूछते थे, लेकिन कैसे अंतिम दिनों में बाबा न्यारे होते गए, होते गए, और वो सुनाती गई, सुनाती गई। बाबा को देख ही नहीं रही है, बस अपने नशे में ही थी, सुनाती जा रही थी। अब बाबा ने कैसे उसको चुप कराया, ऐसे नहीं कहा बहुत बहुत सुना है, बहुत सुना, अभी शांत रहो, ऐसे नहीं। बाबा ने उनसे बहुत प्यार से कहा, बच्ची आपने ये सब पत्र में लिखा था ना? हाँ बाबा मैंने लिखा था, सब आपको लिखा था। बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, माना अभी और बकबक मत करो। बाबा जानते हैं, इतना प्यार से विथ रिस्पेक्ट कहा, बाबा जानते हैं। तो बिचारी एकदम इतनी सहम गई, चुप हो गई। तो मनोहर दादी बताती थी कि मैं तो बाबा को ही देखती रह गई, और बाबा देखो उपराम हो गए, इतने न्यारे हो गए। तो बाद में उस बहन ने भी अनुभव किया, ये मेरा कितना बड़ा देह अभिमान था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो किया, वो किया। हम तो दादी जानकी को देखते थे, दादी जानकी विश्व की सेवा की, कितनी दुनिया के सेवा केंद्र कैसे खोलने के निमित्त बनी, कितनी प्रेरणाएं दी। यूनाइटेड नेशंस में दादी जी ने भाषण किया, यूनाइटेड नेशंस, लेकिन वहां से दादी मधुबन आए थे, जानकी दादी। तो हमने अनायास दादी जानकी से पूछा, दादी आप वो अनुभव सुनाओ ना, क्लास में यूनाइटेड नेशंस में आपने इंग्लिश में भाषण किया। वो लिखत मिली दादी को सुनाने के लिए इंग्लिश में, तो वो दादी ने सुनाया बड़े बेधड़क हो के, आप लोगों ने उसका वीडियो भी देखा होगा, तो कैसे इतने निश्चय से सुना रही है, और 3 मिनट का ही उनका वो स्पीच था, लेकिन कितनी तालियां बजी। और फिर तो जब मधुबन में आई दादी को, मैंने कहा दादी वो अनुभव सुनाओ, दादी कहती मैं तो भूल भी गई। मैं तो भूल भी गई क्या था, दादी आपने यूएन में भाषण किया। अच्छा वो हो गया, दादी कहती मुझे समाचार सुनाना आता ही नहीं है, वो जयंती बहन से पूछो, वो सुदेश दीदी से, सुदेश बहन से पूछो, मुझे समाचार नहीं सुनाना आता है। क्योंकि बाबा दादी तो ज्ञान सुनाती थी, बाबा से उसने वही सीखा था, बाबा ने उसको यही प्रेरणा दी थी। इसका अनुभव बहुत सुंदर था। एक बार दादी सुना रही थी कि जब शुरू शुरू में बाबा मुरली चलाते थे तो मैं सामने बैठती थी, बिल्कुल हिस्ट्री हॉल में एकदम सामने, हाँ जैसे बैठी ना, तो मैं ऐसे ऐसे करती थी, क्योंकि बाबा कहते थे डांसिंग गर्ल को नशा तब चढ़ता है जब सामने वाले हेयर हेयर करे, हाँ वंस मोर करे। तो मैं बाबा के सामने ऐसे ऐसे करती थी, तो बाबा ने मुझे देखा ये ऐसे ऐसे करती है, तो बाबा ने मुझे कहा क्या तुम पिजिन हो? पिजिन होता है ना ये, क्या कबूतर, वो ऊ ऐसे करता है बस, उसको और तो आवाज तो कुछ निकलता नहीं, उं, उं, उं। तो मैं ऐसे करती थी, ऐसे सिर लाती, क्या तुम ऐसे कबूतर हो जो बाबा की मुरली सुनती हो, वो जाके किसी को और को सुनाती हो, बाबा की पॉइंट्स, मुरली की पॉइंट्स सुनाती हो? तो कहती नहीं बाबा, क्योंकि दादी ज्यादा सुनाती नहीं थी, शांत रहती थी। तो बाबा ने कहा ये सबको सुनाओ, जो बाबा की मुरली चली ना बहनों के साथ, आप रिपीट करो पॉइंट्स, आपस में रिपीट करो, तो ये सुनाओ। तो दादी ने कहा जी बाबा। तो फिर जाती थी और बहनों के संग में 14 साल भट्टी में तो यही काम किया, तो फिर सुनाती थी। तो फिर बाबा उनसे पूछते थे सबको सुनाया? तो कहा हाँ बाबा आपने जो कहा बस वो सुनाया। बाबा ने क्या क्या कहा, तुम आप पैरट हो क्या? पैरट क्या करता है, तोता क्या करता है, हा? तोता क्या करता है, जो सुना वही रिपीट, अपनी बुद्धि नहीं चलाता है तोता। गंगाराम नल पर नहीं बैठो, तो नल पर बैठ करके भी यही कहता है, गंगाराम नल पर नहीं बैठो, तो बाबा ने उसको क्या तुम तोता हो, पैरट हो, कि जो सुना वो ही सुनाना है क्या? अपना भी तो विचार सागर मंथन डालना है ना, तो विचार सागर मंथन करके आप सुनाओ। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर तो बस उसके बाद तो उनकी रफ्तार चलती रही, और कैसे फिर विदेशों में गई, तो वहां तो वो कहती थी मैंने बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को कंधे पर बिठाया, कहां सारी दुनिया घूमती थी। एक बार तो एक दिन में कम से कम 4-5 प्लेन दादी ने चेंज किए होंगे और जगह जाने के लिए, और जाते ही वहां भाषण करती थी। ये नहीं कि अभी तो मैं थक गई हूं, नहीं, बिल्कुल कितनी एक्टिव थी। तो हमेशा कहती थी मैंने तो क्या किया है, मैं तो बाबा को, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को कंधे पर बिठा करके सारी दुनिया में नाच रही हूं, तो मैं तो जैसे पपेट हो गई हूं। पपेट है ना, कठपुतली। कठपुतली क्या करती है, वो उसको अपनी ताकत तो होती नहीं है ना, वो ऊपर से कोई रस्सी खींचता है। तो बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, वो हमारी रस्सी खींचते और हमको चला रहे हैं। मैं तो पपेट की तरह, कठपुतली की तरह हूँ, मेरी अपने तरफ से कुछ भी नहीं है, वो ही चलाते हमको। तो फिर तो पहले थी पिजन, फिर बोला पैरेट, फिर बोला पपेट। तो फिर क्या हुआ, अभी बाबा के लाए, अब एक बाबा की एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने पूछा था कि विनाश की डेट फिक्स करो। बाबा ने सबसे कहा कब तैयार होंगे, कब संपन्न होंगे। तो बाबा ने सबसे पूछा, अभी प्रश्न ही पूछे कौन जवाब देगा, तो बाबा ने निर्वैर भाई से पूछा, सामने बैठे थे, कि संपन्न कब होंगे। तो निर्वैर भाई ने कहा बाबा इस सीजन के अंत तक हो जाएंगे, ऐसे कहा। बाबा ने कहा क्या आपने सबका ठेका उठाया है, आपने सबका ठेका उठाया है कि इस सीजन के अंत तक सब संपन्न हो जाएंगे। अब वो तो क्या कहेगा, सबका ठेका तो हम उठा भी नहीं सकते। फिर बाबा ने कंटिन्यू किया, फिर दादी जानकी से पूछा आप बताओ कब तक संपन्न बनोगी, कब घर चलना है, कब डेट फिक्स करो। तो दादी ने उस समय बहुत सुंदर जवाब दिया, दादी ने कहा बाबा मैं तो तैयार हूं, आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं तैयार हूं, बाकी मैं सबका ठेका नहीं उठा सकती। तो बाबा ने फिर उसको और कहा क्या तुम तैयार हो और बाकी सब, आप अकेली जाओगी, सबको ले जाना है, सबको तैयार करना है, सबको तैयार करना है। ये बाबा ने दादी को काम दिया। तो उसके बाद क्या कहने लगी, अभी मैं पायलट बन गई हूं, पहले मैं पिजन थी, फिर पैरट बनी, फिर पपेट बनी, अब मैं पायलट बन गई हूं। तो बस मधुबन में रहती थी दादी जी की अव्यक्त होने के बाद, लेकिन कभी पांडव भवन, कभी शांति वन, कभी ज्ञान सरोवर, कितनी चारों ओर चक्कर लगाती थी। बहुत मनो, उस एज में भी दादी ने इतना कहा, पर सबको तैयार करना है, सबको तैयार करना है। इस पर विदेशी भाई बहनों ने एक ड्रामा बनाया था, मैं आपको थोड़ा हंसाती भी हूँ। विदेशी भाई बहनों ने ड्रामा बनाया था, रशिया वालों ने ड्रामा बनाया था। उसमें क्या ड्रामा बनाया था कि वो ग्रुप आया है रशिया से, दादी जानकी से मिलने आया, तो शांतिवन में गया, तो शांतिवन वालों ने कहा दादी जी तो पांडव भवन गई है। तो बेचारे पैदल आए शांतिवन से पांडव भवन। अब जैसे पांडव भवन पहुंचे, दादी जानकी से मिलना है, तो पांडव भवन में उनको कहा दादी तो ज्ञान सरोवर चली गई है। अच्छा ज्ञान सरोवर चली गई, तो फिर चलो पैदल ज्ञान सरोवर गई। तो उन्होंने बताया कि दादी तो वापस शांतिवन चली गई, तो वापस शांतिवन चली गई, वहीं से तो हम आए हैं, तो फिर जाओ शांतिवन। तो दादी ऐसे इतनी एक्टिव, तो यहाँ भी क्लास कराना है, उधर भी क्लास कराना है, सबसे मिलना है, मानो इतनी एक्टिव थी। तो सबको, तो यही दादी कहती थी मैं सबकी पायलट बन करके सबको ले जाऊंगी, सबको इतना तैयार होना है। यानी कहने का भाव है कि इतनी लगन थी, तो हम दादियों को देखते थे, लेकिन अंतिम दिनों में दादी जानकी जी भी इतनी न्यारी होती गई, पता चला वहां। पता चला। दादी प्रकाशमणि का भी हम देखते थे, इतना सारा कारोबार देखती थी दादी, हम तो उनके अंग संग रहते थे, लेकिन अंतिम दिनों में दिल नहीं होता था दादी से कुछ कहें भी, बस दादी से दृष्टि लेते रहे। और दादी जी भी इतनी प्यार से दृष्टि देती थी, क्योंकि संपन्न बनती गई, संपूर्ण होती गई। हम सोचते थे दादी से क्या छोटी छोटी बातें करें, दादी की स्टेज तो कितनी ऊंची है। तो जिसकी स्टेज इतनी ऊंची होती है तो अवश्य वो दूसरों को भी उसी प्रकार आकर्षित करेगी। और हम सोचते थे ये कहूंगी, दादी के सामने जाते थे सब भूल जाते थे, बिल्कुल भूल जाते थे कि कुछ सुनाना भी है, बस दृष्टि लेते रहते थे। ये दादियों में हमने देखा, तो क्योंकि उनके अंदर बस एक ही लगन थी, भगवान के श्रीमत पर हमें चलना है। और मुरली पर इतना ध्यान, जैसे आप जानते हैं मम्मा के बारे में, मम्मा एक मुरली कितनी बार पढ़ती थी, कितनी उसकी गहराई में जाती थी। दादी जानकी को भी देखते थे, इतनी लगन मुरली के प्रति। हम एक बार दादी के पास गए, कुछ कहना था, तो मैं देखा दादी मुरली पढ़ रही है, अब मैं जाके बैठ गई। लेकिन दादी ने ऐसे भी नहीं किया कि कौन आया है, बिल्कुल पूरा टाइम मुरली पढ़ती गई। मैं अभी बैठी रही, बड़ा अच्छा लग रहा था, दादी से वाइब्रेशंस तो मिलते ही है, मैं भी बैठी रही। और दादी ने जब मुरली पूरी की तब कहा, अच्छा शीलू तुम आई हो क्या, बोलो। लेकिन जब मुरली पढ़ रही थी तो बस एक टिक, एक लगन, केवल मुरली बाबा की, बस उसमें इतनी बुद्धि उनकी थी। तो हम ये बहुत बड़ी प्रेरणा ली दादी से कि देखो दादियां, इन्होंने कोई मुरलियां तो कितनी सुनी होगी, रिविजन हो रही है साकार मुरलियां भी, चाहे अव्यक्त मुरलियां भी, पहले भी सुनी होगी, तो कोई तो कितने अलबेले होते हैं। लेकिन हमारी दादियां ऐसे ही नहीं संपन्न संपूर्ण बनी। दादी गुलजार को भी हम देखते थे, अव्यक्त बाप दादा का मिलन हुआ पूरा, फिर दादी गुलजार अपने कमरे में जाती थी, और कमरे में तब तक वो जो अव्यक्त मुरली बाबा की चली वो उसी समय टाइप होती थी, और टाइप करके पूरा प्रिंट आउट लेकर के कमरे में उनके बेड पर रख देते थे, राजू भाई रख देता था। और दादी जैसे कमरे में गई वो मुरली पढ़ती थी, जो अव्यक्त बाप दादा ने चलाई तो वो मुरली पढ़ती थी। तो एक बार हम चले गए दादी के कमरे में, तो दादी को, दादी आप कितने लकी हो, देखो दादी बाबा आप में आते हैं, आप वतन में बाबा से मिलती हो। मैंने तो उस प्रकार से कहा, दादी ने कहा नहीं तुम ज्यादा लकी हो मेरे से। मैंने कहा दादी हम कैसे आपसे ज्यादा लकी है ज्यादा, तो कहा देखो ये मुरली हमने तो सुनी नहीं, आप लोगों ने डायरेक्ट सुनी, मुझे तो पढ़नी पड़ती, आप लोगों ने सुनी तो कौन ज्यादा भाग्यशाली है, आप भाग्यशाली। तो मतलब कहने का भाव है कि दादियां भी इतनी निर्माण, इतनी निर्मल, इतनी मीठी, इतनी प्यारी, तो जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा थे, तो ये सब हमने सीखा, अनुभव किया, अनुभव करने से ही फिर वो गुण हमारे में भी आते गए। तो हम देखते हैं कि जैसे बाबा ने किया, मम्मा ने किया, दादियों ने किया, अब हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम अवश्य ये अनुभव करें कि बाबा की हर मुरली का एक एक वाक्य कितना अनमोल है, कितना श्रेष्ठ है, कितनी उसमें गहराई है, एक एक खजाना है। और बाबा कहते हैं ये ज्ञान रत्न भविष्य में सच्चे रत्न बन जाएंगे। तो हम अपने आप से पूछे, हम कितना महत्व देते हैं बाबा की मुरली को, जो कभी बाबा की मुरली एक दिन भी मिस नहीं करते वो हाथ उठाओ, सभी नहीं, थोड़े हैं जो हाथ नहीं उठा रहे, कभी कभी तो मिस करते होंगे जरूर, वो हाथ नहीं उठवाती लेकिन अच्छा है, फिर भी रिजल्ट अच्छी है। तो जरूर इतना महत्व हम दें, क्योंकि बाबा के हर वाक्य में श्रीमत है, क्या करो क्या नहीं करो, ये करो बच्चे, ये नहीं करो बच्चे, हाँ, प्रेम से व्यवहार करो, बच्चे खीर खंड होके रहो, लूण पानी नहीं बनो। हाँ बच्चे, हाँ कैसे प्यार से सेवा करो, मतलब एक एक वाक्य महावाक्य ये करो ये नहीं करो, ये भगवान की श्रीमत है। आज बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा, भगवान हमें ईश्वरीय मत देते हैं और वहाँ रावण क्या करता है, हा? अपनी मत देता है, रावण की मत। तो रावण की मत कहाँ ले गई हमको, कहाँ पहुंचा दिया रावण की मत ने। रावण की मत ने हमें देखो कंगाल बना दिया, दुखी बना दिया, अशांत बना दिया, पापात्मा बना दिया, विकारों के वशीभूत कर दिया। अब भगवान की श्रीमत मिलती है तो किसका मानना है, क्या रावण का मानना है? अभी तक अगर श्रीमत नहीं है माना, रावण की मत पर चल रहे हैं, मुरली नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, हाँ नहीं मनन करते, नहीं चिंतन करते, इसका मतलब शिव बाबा की श्रीमत का पालन नहीं करते। अमृत वेले नहीं उठते माना श्रीमत का पालन नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं जिससे प्यार होता है उसकी हर बात मानी जाती है, जिससे प्यार होता है उन जैसा बनना होता है, जिससे प्यार होता है उसके लिए कुछ भी कुर्बानी करने लिए तैयार है, ये प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है उनके समान बनना बनने का लक्ष्य होता है। तो हमारा बाबा से कितना प्यार है वो कैसे पता चलेगा, हम कितना उनकी श्रीमत पर चलते हैं। अगर थोड़ी भी अपनी मन मत मिक्स करते हैं माना रावण की मत पर चले, थोड़ा भी दे अभिमान में आते हैं, थोड़ा भी क्रोध करते हैं, थोड़ा भी किसी के प्रति यहाँ किसी को कुछ अपशब्द का, गलत चल अपशब्द न सही पर ऐसा शब्द का जो उसको बुरा लगा, तीर के समान चुभ गया, दुख मिला, ये श्रीमत के खिलाफ है। फिर बाबा सावधान भी करते हैं किसी को दुख दिया तो दुखी होके मरेंगे। हाँ ये क्या कहावत है, तो कई कहते ये क्या श्राप दिया बाबा ने हमको, श्राप नहीं दिया, ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। तो इसीलिए जब उस वास्तविकता को हम समझते हैं तो हमारा फर्ज क्या कहता है कि अगर हमको अपना कल्याण करना है तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो देखो हाँ, बाबा ने हमें बहुत सुंदर श्रीमत दी है, उसके महत्व को जान करके हम अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। ये किसका बजा, किसी का ये ट्रैफिक कंट्रोल तो नहीं बजा, कह रहा भी। हाँ ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, क्या करेंगे सभी, श्रीमत को कभी भूलो मत, हर कदम कदम पर श्रीमत। क्योंकि जो हमें बोलना नहीं है वो सोचना भी नहीं है। कई बार हम सोच लेते परंतु बोलते नहीं है, पर एक दिन वो बोल निकल आएंगे, क्योंकि अंदर तो सोचते हैं ना। तो जो बोलना नहीं है वो सोचना भी नहीं है, और जो करना नहीं है वो बोलना भी नहीं है। बाबा तो ऐसे ही थे। अभी जो
अवश्य ही बहुत सुंदर मार्गदर्शन मिला होगा कि भट्टी का लक्ष्य उद्देश्य क्या है और उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना है। सुंदर मार्गदर्शन के लिए एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।